ओम शांति। अभ्युक्त मुरली 11 मई 1984। कुमारों के अलग अलग ग्रुप से अभ्युक्त बाप दादा की मुलाकात। 5 ग्रुप है। अभ्युक्त मुरली 11 मई 1984। पहला ग्रुप, सभी श्रेष्ठ कुमार हो ना, साधारण कुमार नहीं, श्रेष्ठ कुमार। तन की शक्ति, मन की शक्ति सब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, कोई भी शक्ति विनाशी कार्य में लगाने वाले नहीं। विकारी कार्य है क्या? विकारी कार्य क्या है? विकारी कार्य है विनाशकारी कार्य, और श्रेष्ठ कार्य है ईश्वरीय कार्य। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार। कहा व्यर्थ के खाते में तो कोई शक्ति नहीं लगाते हो? कभी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है, अभी अभिशक्त अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है, यह समझ मिल गई है। इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी हो, अनुभव करते हो कि श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है या होनी है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, यह अनुभव है ना? जिसकी एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो, वह कितने श्रेष्ठ हुए। जिनकी इतनी जमा संपत्ति हो, उनको कितनी खुशी होगी। आजकल के लखपति करोड़पति को भी विनाशी खुशी रहती है। आपकी अविनाशी प्रॉपर्टी है। श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा समझते हो? श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा क्या है?
शांति कार्य,
सृजनात्मक कार्य करने वाले, और
शांति
कार्य, और शक्तिशाली,
पवित्र बनना और बनाना,
दैवी मैनर, पवित्र और पवित्र रहने वाले और दूसरों को बनाने वाले। और श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा समझते हो मनी भाई? श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा, सदा मणि को देखने वाले। अशोक भाई, चलते फिरते खाते अशोक, शोक का संकल्प नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, अशोक वाटिका में रहने वाले। क्या कहा? आत्मा को देखने वाले। और भी कुछ?
परमात्मा को देखने वाले।
श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति। बाप ही जिनका संसार है, व्यक्ति वैभव। बाप की संपत्ति सो मेरी संपत्ति। और कुमारी की बता दो।
सच्ची सीता,
सच्ची सीता है। तो बाबा कह रहे हैं, श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा समझते हो? सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, हर शक्ति को श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। व्यर्थ खाता सदा के लिए समाप्त हुआ, श्रेष्ठ खाता जमा हुआ है, या दोनों चलता है? एक खाता, एक खत्म हुआ, अभी दोनों चलने का समय नहीं है, अभी वह सदा के लिए खत्म। दोनों होंगे तो व्यर्थ भी है, और अगर दोनों होंगे तो श्रेष्ठ भी है और व्यर्थ भी है, दोनों साथ साथ चल रहे
हैं।
क्या हो जाएगा?
वही के वही रहेंगे।
दोनों होंगे तो जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं होगा, गवाया नहीं। जमा हुआ तो कितना जमा होगा? तो व्यर्थ खाता समाप्त हुआ, समर्थ खाता जमा हुआ। मुरली है 11 मई 1984। अव्यक्त बाप दादा की अलग अलग कुमारों के ग्रुप से मुलाकात। तो पहला ग्रुप, सभी श्रेष्ठ कुमार होना, साधारण कुमार नहीं, श्रेष्ठ कुमार। तन की शक्ति मन की शक्ति सब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। शरीर की भी शक्ति है तो मन की भी शक्ति है और दोनों ही शक्तियों को श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। कोई भी शक्ति विनाशी कार्य में लगाने वाले नहीं। हमारे जो भी कार्य होंगे शरीर द्वारा या मन के द्वारा वो सभी कैसे हो, ईश्वरीय कार्य हो। विकारी कार्य है विनाशकारी कार्य, श्रेष्ठ कार्य है ईश्वरीय कार्य। तो विकार के जो कार्य है वो सभी कैसे है, विनाशकारी कार्य। विकार ही विनाशकारी है। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार। कहां व्यर्थ के खाते में तो कोई शक्ति नहीं लगाते हो, अभी अपनी शक्तियों को कहां लगाना है यह समझ मिल चुकी है। तो सभी शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले, कौन सी शक्तियों को, एक शरीर की और मन की। मन की शक्तियां कौन सी जो कि ईश्वरीय कार्य में लगाना है, वो है संकल्प की शक्ति। सबसे पहली शक्ति है और सबसे श्रेष्ठ शक्ति है संकल्प की शक्ति। हमारे जो भी संकल्प हो वो विश्व की सेवा करे। बाबा ने कल कहा था संकल्पों के ऊपर ध्यान दो, संकल्पों को पावरफुल शक्तिशाली बनाने के ऊपर ध्यान दो। यहाँ संकल्प किया वहां फल। जैसे बाबा ने अपना उदाहरण दिया, भक्ति मार्ग में भक्तों को फल कैसे मिल जाता है, बाबा तो नीचे नहीं आता है, वहीं से संकल्प किया और इधर फल मिला। हम संकल्प यहाँ करें परिणाम कहीं और हो, उसका फल कहीं और मिल जाए। तो हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से हमें सेवा करनी है। विश्व की सबसे बड़ी सेवा जो होती है वो संकल्पों के द्वारा होती है। किन आत्माओं के प्रति हम क्या संकल्प कर रहे हैं, उन आत्माओं के प्रति यदि हमारे मन में योग के समय यदि किसी के प्रति निगेटिव संकल्प आ गया, योग में हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है, अगर उस अवस्था में अमृत वेले योग के समय अगर किसी एक आत्मा के प्रति निगेटिव घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष का संकल्प उत्पन्न हो रहा है और बार बार उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पहुंचेगा, उसके भी मन में वैसा ही संकल्प उत्पन्न होगा। हमारे मन में उसके प्रति नफरत का संकल्प क्रिएट हो रहा है, उसके प्रति भी वो संकल्प उसी तरह का, चाहे वो ज्ञानी वो अज्ञानी आत्मा हो, इस संसार में कहीं पर भी हो। हम बैठे यहां हैं, संकल्पों में वो गति है, पर्वतों को चीर कर वो जा सकते हैं, उन्हें कोई भी अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकता उनके मार्ग में, कहीं पर भी वो आत्मा हो। इसके लिए हमारा एक एक संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें भी ज्यादा योग के समय हम बैठकर जब संकल्प करते हैं तो उसमें चाहे कोई भी आत्मा कैसी भी हो उसके प्रति हमारी बेहद की ही दृष्टि हो और उस बेहद की दृष्टि में स्थित होकर ही उस आत्मा को देखना है। यदि निगेटिव संकल्प उत्पन्न हो रहा है तो तुरंत स्वयं को परिवर्तन करना है संकल्पों को। इसके लिए योग के समय तो ब्राह्मणों की स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि ब्राह्मणों के संकल्प में यदि वरदान देने की शक्ति है तो किसी को अभिषिक्त तो भी कर सकती है, किसी को अभिशाप भी मिल सकता है हमारे संकल्पों के द्वारा। केवल संकल्प, बोल की तो बात ही नहीं कर रहे। यदि किसी कुमार को किसी ने सताया होगा और वो कुमार कह दे कि तुम तड़प तड़प के मरोगे तो वो भी हो सकता है, परंतु उसमें स्वयं का भी नुकसान होगा, क्योंकि ऋषि मुनि संसार में दिखाए हुए हैं। दुर्वासा ऋषि दिखाया है ना, वो कितनी तपस्या की फिर बीच में एक शाप दे ही दिया, शक्तियां कम हो गया, फिर से तपस्या करो। शाप देने में बहुत सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है, हाँ भोगना भी पड़ेगा उसको। जो भी कर्म हम करते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमने यदि किसी को पीड़ा पहुंचाई तो किसी के द्वारा हमें भी पीड़ा प्राप्त होगी, जरूरी नहीं उसी व्यक्ति के द्वारा। जैसे एक सेठ सुबह सुबह निकला, अपनी कार का दरवाजा खोला, नीचे एक कुत्ता था, गलती से उसके ऊपर पैर पड़ गया, कुत्ते की पूंछ के ऊपर, तो कुत्ता बौखलाया, उसने जोर से उसको काटा। अब उस सेठ ने बहुत सारे पत्थर लिए और उसको मारने की कोशिश की, पर वो कुत्ता तो भाग गया वहां से, उसको एक भी पत्थर नहीं लगा। अब इतना क्रोधित और इतना गुस्से में वो मैनेजर ऑफिस का किसी ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में कोई जरूरी मीटिंग थी, जितने लोग थे सदस्य आए थे, सबको इतना डाटा, बहुत डाटा। उनकी कोई गलती थी नहीं, परंतु गुस्सा इधर जमा कर रखा था, अभी क्या करे इसका, कुत्ते का सारा गुस्सा जो था वो सब इनके ऊपर निकाला। तुम लोग ठीक से काम नहीं करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम लोग वैसा करते हो, तुमको ये भी नहीं आता, तुमको वो भी नहीं आता, ऐसा बहुत डाटा। अब ये जितने अधिकारी थे वो अपने अपने जहां जहां ऑफिस था अपना अपना वहां वहां गए, और उनके नीचे वाले जितने थे चपरासी से लेकर जितने जो भी थे उनको सबको डांटना चालू किया, उन सबको बहुत डांटा उन्होंने। अब इतने सारे जो चपरासी थे उनमें का उसमें से एक चपरासी जब अपने घर पे पहुंचा तो पत्नी ने कहा लेट क्यों हो गया, हमेशा की तरह उसने तो बड़े प्यार से पूछा आज भी लेट हो गए, तो इतना उसको डांटा कि थाली विली सब फेंक दी भोजन की। फिर पत्नी फिर वो खुद गुस्से से भर गई। अब उसने वो अपना गुस्सा कहाँ निकालेगी, उसके कंट्रोल में तो बच्चे हैं, तो पकड़ के बच्चों को बहुत डांटा। अब बच्चे क्या करे, बच्चे बाहर निकले घर से और देखा कुत्ता है बाहर, तो पत्थर उठाए और जोर जोर से कुत्ते को दे मारे, और जो उसको लगे वही वाला कुत्ता था सुबह वाला। Every action has equal and opposite reaction. जो भी हम इस सृष्टि में फेंक रहे हैं वो हम तक आएगा। कुछ भी फेंको, गेंद होती है ना, फेंको वो वापस आती है। वो मोगली होता है ना, जंगल बुक का मोगली, उसके पास वो होता है कैटापल्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे पता नहीं, चाव वो वापस जो फेंको तो वो तुरंत अपने हाथ में वापस आ जाती है। बुमरैंग नहीं, वो तो इंग्लिश है, उस व्यक्ति उस वस्तु को क्या कहते हैं, बुमरैंग तो नाउन ये है, जाना और आना वापस, तो कैटापल्ट कहते हैं उसको एक रीति से, तो वो जाता है और वापस आता है। वैसे ही हम जो कुछ भी संकल्प करते हैं सृष्टि में जाते हैं और वापस आते हैं। जो भी हम फेंकेंगे, शुभ भावनाएं जाने दो तो शुभ भावनाएं आएगी। इसके लिए शास्त्रों में जो ऋषि मुनि
बोलो क्या प्रार्थना करते थे, सर्वे भवन्तु
सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। इस तरह की वो प्रार्थनाएं करते थे।
क्यों करते थे प्रार्थनाएं, क्योंकि ये श्रेष्ठ संकल्प सृष्टि में फेंकते थे और वही संकल्प हम तक आता है। इसके लिए योग के समय यदि किसी आत्मा के प्रति हमारे मन में निगेटिव संकल्प उत्पन्न भी हो जाए, तुरंत उसको वहीं के वहीं परिवर्तन कर दो और उसके प्रति श्रेष्ठ भावनाएं, महान संकल्प, जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें क्या करना है उसकी प्लानिंग अमृत वेले करनी है। यदि हमने संकल्प लिया मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है और उसके इर्द गिर्द उस वर्तुल में जो भी आत्माएं हैं सभी को इमर्ज करके सभी के प्रति प्रेम स्वरूप, जो बहुत अहंकारी है उनके प्रति भी प्रेम स्वरूप, जो बहुत दिखावा आडंबर दंभ करते हैं उनके प्रति भी प्रेम स्वरूप, जो बार बार हमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दुख देते हैं, टांग खींचते हैं, गलत बोलते हैं, बुराई करते हैं, ऊपर से अच्छा बोलते पीछे से बाहर खराब बोलते हैं, सभी के प्रति प्रेम स्वरूप की भावना। तो अपनी शक्तियों को कहां लगाना है यह समझ मिल चुकी है। शरीर की शक्ति, ऐसे कार्यों में शरीर को नहीं लगाना जिससे शरीर थक जाए। उसके लिए बाबा कह रहे हैं सबसे प्रमुख जो है वो विकार का कार्य है। विकारी कार्य है, विनाशकारी कार्य, जो न केवल शरीर को परंतु मन को, मन में उत्पन्न श्रेष्ठ भावनाओं को, मन में उत्पन्न उस प्रेम को, वासना सभी चीजों को नष्ट कर देती है। आवेग होता है, क्षणिक आवेग, परंतु जैसे ही उत्पन्न होता है सब कुछ आग की तरह है। जैसे आग लगते ही सारा का सारा बगीचा या जंगल नष्ट हो जाता है, मन में उत्पन्न हुए सारे फूल सारे पुष्प इस आग में झुलस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ये आग है, इसके लिए बाबा कह रहे हैं विराशी विकारी कार्य है, विनाशकारी कार्य, उसका स्मॉल ब्रेन सेरेबेलम जो है उस पर भी अभ्यास किया गया, जो व्यक्ति विकारों में जा रहे हैं उनके ऊपर उस पर भी बहुत सारे गलत परिणाम पड़ते हैं। परंतु दो व्यक्तियों के बीच में क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेम की भावना होती है, इसके लिए वो प्रभाव थोड़ा कम दिखाई देता है। परंतु बहुत सारे स्टडीज में व्यक्तियों की, पुरुषों की और स्त्रियों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके लिए विकारी कार्य है, विनाशकारी कार्य, और श्रेष्ठ कार्य है ईश्वरीय कार्य। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार, कहा व्यर्थ के खाते में तो कोई शक्ति नहीं लगाते हो। यह समय जमा करने का समय है। कल बोला था ना, सारे खजाने तुम्हें यहाँ मिले हैं, तो इस समय सारे खजाने मिले हैं, मिले भी है, जमा करने की बैंक यहाँ खुली हुई है। एक जन्म में कई जन्मों के लिए जमा करते हो, ये जो वाक्य है, एक जन्म में कई जन्मों में के लिए जमा करते हो, जितना ही हमारी बुद्धि में स्पष्ट होगा, जितनी ही इस वाक्य के प्रति जागरण का भाव होगा, उतने ही हमारे सभी कार्य श्रेष्ठ होंगे। तो अभी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है यह समझ मिल चुकी है। सृजनात्मक कार्य में लगाना है, रचनात्मक कार्य में, क्रिएटिव कार्य में, जिससे कुछ निर्माण हो। हमारा जो भी कर्म हो वो विश्व से संबंधित है, जो भी हम करें उसका सीधा संबंध विश्व से है। हम अगर श्रेष्ठ संकल्प करें, श्रेष्ठ कार्य करें, तो विश्व की उन्नति होगी। क्योंकि हम हैं कौन इस संसार के आधार मूर्त। हमारे अंदर यदि विकार का संकल्प उत्पन्न हो रहा है, उससे संसार का नुकसान हो रहा है। उधर संसार की जो आत्माएं है उनके अंदर विकार के संकल्प उत्पन्न होंगे। हमारा मन यदि व्यर्थ में रमन कर रहा है तो संसार की आत्माएं व्यर्थ में डूबेगी। हमारे मन में यदि श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो रहा है, वो भी इस भूमि में बैठकर, संसार की महानतम भूमि है ये, इस भूमि से निकले हुए संकल्प इस अरावली के पर्वत को चीर कर और सातों समुन्दर समुन्दर से पार जाकर विश्व विश्व की विदेश की आत्माओं तक पहुंचते हैं। इसके लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हो। ऐसे अधिकारी हो, अनुभव करते हो कि श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है। कल कहा था ना, इसका अनुभव भी करो। परिवार की आत्माओं को सहयोग मिल रहा है, एक बात, और दूसरा इसका अनुभव करो। हमको अनुभव भी हो कि हमसे जो शक्तियां निकल रही है आत्माओं तक पहुंच रही है। इसका प्रमाण क्या है कि जो हमने सकाश दी वो पहुंच गई? हमने तो दी सुबह अमृत के लिए देवेंद्र भाई सकाश पर, इसका प्रमाण क्या है कि उस आत्मा तक वो पहुंच गई?
ये सभी आगे इनको तो दी थी पहले, सभी आगे
फिर भी खुशी, एक्स्ट्रा खुशी। और नागेश भाई, हमने सकाश दी, उस तक वो पहुंची कि नहीं पहुंची, इसका प्रमाण क्या है? हमें हल्कापन होगा। वो दुखी था, हमने सकाश दी, हम तो हल्के थे ही। रिजल्ट नहीं, हमने पूछा ही नहीं अभी, हमने तो दे दी, तुरंत कैसे पता होगा? तुरंत फोन अभी आया ही नहीं, अमृत वेले का समय चल रहा है, 4:15 है। सकाश देने के बाद पोस्ट सकाश योग डीप
को पकड़ेंगे ना।
और हमने सकाश दी किसी आत्मा को, वो पहुंच गई उस आत्मा को, जैसे ही वह सकाश पहुंचेगी, यहां हमारी जो अवस्था है वो इतनी गहरी अवस्था हो जाएगी और एक बहुत ही गहरा अनुभव से हम गुजर जाएंगे कि हमने सकाश दी और उसको जैसे ये वस्तु को यहां से उठाया और यहां डालते हुए डाल दी हमने, कैसे हम देख रहे हैं उठी वस्तु गई और रख दी, वैसे ही हम देखेंगे हमारा संकल्प ऐसे जा रहा है वस्तु की तरह और वहां पर फिट हो रहा है उसके ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर में जा रहा है उसके, हम देखेंगे और इसका इतना गहन अनुभव होगा। जब ऐसा गहन अनुभव हो गया तो समझ लेना सकाश पहुंच गई, बीज डल चुका है। अब वो फलित कब होगा वो दूसरी बात है, उसका फोन आया नहीं आया वो दूसरी बात है, उसकी दुआएं मिले ना मिले उसको तो पता ही भी नहीं कि किसने सकाश दी, हमने तो अज्ञानी आत्माओं को दे दी, अज्ञात आत्माओं को दे दी, अपरिचित आत्माओं को सकाश दे दी, उसे तो पता भी नहीं हम दे रहे हैं। तो एक डीप रियलाइजेशन, एक डीप एक्सपीरियंस से हम गुजर जाएंगे उस पल। तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, अनुभव है जितना एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो वह जिनकी एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो वह कितने श्रेष्ठ हुए, जिनकी इतनी जमा संपत्ति हो उनका कितना उनको कितनी खुशी होगी। जैसे आजकल के लखपति और करोड़पति है उनको विनाशी खुशी होती है, तो आपकी तो क्या है अविनाशी प्रॉपर्टी है। श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा समझते हो तो क्या है परिभाषा, सदा हर शक्ति को श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, हर कार्य श्रेष्ठ हो महान हो सृजनात्मक हो क्रिएटिव हो विश्व के लिए लाभदायक हो विश्व के लिए फायदेमंद हो, उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त हो हर आत्माओं को। सोलहवीं शताब्दी में इटली में एक बहुत बड़ा चित्रकार, एक बहुत बड़ा मूर्तिकार, एक बहुत बड़ा कवि, उसके इतने सारे गुण हैं कि लिखने जाओ तो वर्णन नहीं कर सकते इतने गुण है, माइकल एंजेलो। उसने एक ऐसी मूर्ति तैयार की थी वेटिकन सिटी में जो थी, शायद अभी नहीं है, उसमें एक जीजस मदर मैरी और जीजस क्राइस्ट छोटा बालक उसकी गोद में है। अभी ये जो मूर्ति थी इतनी प्रसिद्ध थी, इतनी प्रसिद्ध थी, इस मूर्ति की एक अद्भुत सी कहानी है कैसे इस मूर्ति का उसने निर्माण किया था। दिखाया है कि एक बार माइकल एंजेलो एक दुकान में जाता है कुछ खरीदने के लिए, उस दुकान के बाजू में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ होता है, पत्थर रहता है जो कि ऐसा ही व्यर्थ है। तो वो पूछता है कि ये पत्थर मैं ले सकता हूं क्या, वो दुकानदार कहता है ये पत्थर तो ऐसे ही व्यर्थ में यहां पड़ा हुआ है, आज तक इतने लोग आए किसी ने ये पत्थर लेने की बात नहीं की, इस पत्थर को तो आप वैसे ही ले जाओ, वैसे भी यहां पर हमारी जगह ले रहा है। और वो पत्थर को वो ले जाता है और उसी पत्थर पर वो मूर्तिकार वो स्कल्प्टर उस मूर्ति की रचना करता है जिसमें मदर मैरी जीसस क्राइस्ट को अपनी गोद में लिए हुए है। वो दुकानदार एक दिन उसके घर आता है और देखता है ऐसी अद्भुत और ऐसी सुंदर मूर्ति, अद्वितीय अनूठी। वो कहता है ये मूर्ति आपने कहां से लाई, ये मूर्ति बनाई किस कैसे। वो कहता है ये वही पत्थर है जो कि आपके दुकान के पास में पड़ा हुआ था। तो वो कहता है परंतु आपको तब कैसे पता चला कि उस पत्थर में ये मूर्ति है और ये मूर्ति आप निर्माण कर सकते हो, वो पत्थर तो पता नहीं कितने सालों से वहां पड़ा था। वो कहता है बहुत सुंदर बात कहता है, जब मैंने उस पत्थर को देखा तो जीसस क्राइस्ट की आवाज मुझ तक पहुंची, जीसस क्राइस्ट मुझसे कह रहा था ओ माइकल एंजेलो आई एम एनकेज्ड इन दिस स्टैच इन दिस रॉक प्लीज फ्री मी, मैं इस पत्थर में बंद हूं मुझे मुक्त करो। ऐसी प्रेरणाएं उसको आई कि मैं इस पत्थर में बंद हूं आबद्ध हूं मुझे तुम मुक्त करो। छोटा सा एक संकल्प है, यह संकल्प उसके मन में आया और उसने कार्य चालू कर दिया, बिकॉज द लॉर्ड इज कॉलिंग मी एंड आई हैव टू फॉलो द लॉर्ड, मुझे उसकी प्रेरणा है और मुझे उसको फॉलो करना है, उसने जो आदेश दिए हैं। और तब से ही वो उसको वो पत्थर नहीं दिख रहा है, जनमानस को वो पत्थर दिख रहा है, साधारण व्यक्ति के लिए केवल वो पत्थर है, परंतु वो पत्थर देख ही नहीं रहा है। अभी तो केवल उसे उसको हटाना है जो व्यर्थ है, मूर्ति तो है ही मूर्ति कहीं से लानी नहीं है, मूर्ति है परंतु जो मूर्ति नहीं है उसका कार्य था उसको हटाना। वो कहता है मैंने केवल उसको हटा दिया जो कि वहां जो कि जरूरी नहीं था, और वो अद्भुत सी मूर्ति वेटिकन सिटी में शायद अभी नहीं है, या वो भी मुझे ये पता नहीं अभी है या कुछ सालों पहले शायद उसको नष्ट कर दिया गया, लोगों ने उसे जो कि क्रिश्चियनिटी के विरोध में थे उन्होंने उसे खत्म कर दिया। अब तक कितने हजारों कितने सालों तक वो मूर्ति थी और बहुत श्रेष्ठतम मूर्ति थी। तो रचनात्मक कार्य ऐसे होते हैं कि जहां कुछ भी नहीं है वहां देख लेना, यहां से बहुत कुछ निर्माण किया जा सकता है। जब पांडवों को खांडव प्रस्थ प्राप्त हुआ था, महाभारत में दिखाया हुआ है, जब पहला जो शतरंज का खेल होता है चौसर का, उसमें पांडवों की हार होती है, उसमें उनको क्या दिया जाता है, वो खांडव प्रस्थ दिया जाता है, और दुर्योधन अपना इंद्रप्रस्थ नहीं कौन सी नगरी है हस्तिनापुर का राज्य ले लेता है और उनको वो बंजर भूमि दे देता है। तो श्री कृष्ण उनके साथ जाता है उस बंजर भूमि पर, वो खांडव प्रस्थ में इंद्रप्रस्थ की का निर्माण करते हैं। तो जरूर एक विजन उत्पन्न किया होगा, देखा होगा बंजर भूमि है परंतु देखा क्या, श्रेष्ठ को देखा और उसका निर्माण किया। श्रेष्ठ कार्य यहां चालू होते हैं, वहां तो बहुत बाद में, 90% कार्य यहां होता है, जहां कुछ है ही नहीं पहले ही देख लो वहां हो गया है, और फिर जो 10% कार्य है उसमें जो भी विघ्न है या जो कुछ भी है वो स्वतः ही हो जाएंगे। तो व्यर्थ खाता सदा के लिए समाप्त हुआ, श्रेष्ठ खाता जमा हुआ, या दोनों चलता एक खत्म हुआ, अभी दोनों चलने का समय नहीं है, अभी वह सदा के लिए खत्म। दोनों होंगे तो जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं होगा, गवाया नहीं जमा हुआ तो कितना जमा होगा। तो व्यर्थ खाता समाप्त हुआ, समर्थ खाता जमा हुआ। अव्यक्तवाणी 11th May 1984 कुमारों का ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप था ये। अच्छा, ओम शांति।
Thank you.